इसी तरह मेरे पास अगली टिप क्या है कि रंजो गम और हसद के असरात, क्या असरात है, क्या इफ़ेक्ट्स हैं या आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं, हम इसको जानते हैं। डॉक्टर रॉसेल का ताल्लुक जामिया कॉर्नेल के मेडिकल इंस्टीट्यूट से है। उन्होंने गठिया, ये जो जोड़ों के दर्द होते हैं ना, उसके बारे में, उसके चार बड़े और ज़्यादा फैले हुए असबाब बताए हैं। शादी का टूट जाना, मादी नुकसान और रंज, पलक और तन्हाई और हकारत और हसद। दांतों के अमरीकी डॉक्टरों की यूनियन को एक खिताब में डॉक्टर विलियम कहते हैं, पलक और खौफ वगैरह दूसरे गैर खुशगुन ख्यालात जिसमें में कैल्शियम की मकदार बढ़ा सकते हैं और नतीजतन दांतों के ज़ाया होने का ख़तरा पैदा हो जाता है। तो ऐसे ये ना कहा करें कि बच्चे चूंकि मीठा बहुत खाते हैं तो दांत ख़राब होंगे, आप गम बहुत खाते हैं इसलिए भी आपके दांत ख़राब हो जाते हैं। ये बुढ़ापे में कौन से चॉकलेट्स होते हैं, कभी आपने सोचा? देखिए, जिस्म में दो दफ़ा हमारे दांत रेनोवेट होते हैं ना, एक 7 साल की उम्र में पहले दांत उतर जाते हैं और फिर बुढ़ापे में। तो बचपन में तो चॉकलेट खाए, चलो दांत उतर गए, ये अगले दांत आपके गम खाने से जाते हैं। इसीलिए आप देखेंगे खुश रहने वाला बंदा, रिलैक्स बंदा, जॉली बंदा, खुशगवार मिजाज वाला बंदा बीमार भी कम होगा, परेशान भी कम होगा, उसके चेहरे पे ही एक अजीब सी जिंदगी के असरात है। और फील किया करें कि कुछ लोगों को मिलकर एनर्जी क्यों मिलती है और कुछ को देखकर ख्याल क्या है। वो जैसे आजकल एक लफ्ज़ बड़ा मशहूर है ना कि मोटिवेशनल स्पीकर, तो मैं सोचती हूँ कि कुछ लोग तो मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, बहुत सारे डीमोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं। तो दीन वाली बात करने वाले, दीन की बात आगे करने वाला अगर मरा मरा दुखी, सब खत्म, क़यामत आ जाएगी, बस आखिरी वक्त आ गया है, अब तो कोई चीज़ें ना जमा करो, पता नहीं बचना है नहीं, नेगेटिव तबलीग, यानी अव्वल तो करते कोई नहीं और जो करते हैं उनमें से तकरीबन 60% लोग नेगेटिव तबलीग करते हैं। अल्लाह मुझे उनमें ना करे, कम अज़ कम मैं भी मुबल्लिगा ही कहती हूँ ख़ुद को, कि अल्लाह का पैगाम बंदों तक पहुँचाना है। यकीन करें इतना मोरल डाउन हो जाता है कुछ लोगों की बातें सुनकर, ऐसे लगता है जहन्नमी, काफर, खप गए, रुल गए, अब कुछ हमारे हाथ नहीं रहना। कभी कभी ऐसी चीज़ देनी चाहिए डोज, जैसे कभी मीठा, कभी कड़वा, कभी खट्टा। और ये भी तो देखिए ना किन लोगों में, वो लोग जो 10 12 15 20 साल से आपके साथ हैं और चेंज ना आए तो उनके साथ तो अभी कड़वी बात करें। आप अपने पर लीजिए, 20 साल का आपका बेटा है जिसको आप 20 साल से बेहतर करने की कोशिशों में, अब वो खराबी करेगा तो आपकी आवाज़ में गुस्सा और सख्ती आ सकती है। लेकिन अब 4 5 साल के बच्चे के साथ आप क्या सख्ती करेंगे? तो लिहाजा आपने, मैंने इंशाल्लाह इन चीज़ों से अपने आप को बचाना है। फिर थोड़ा सा इस सारी चीज़ को अगर खुलासे में देख लें कि रंजो गम और हसद के क्या असरात होते हैं हमारे जिस्मों पर, तो आप देखिए मनफी सोच, नेगेटिव थॉट्स आती हैं और मनफी सोच और बदले की ख्वाहिश रखता है बंदा। अच्छा, मैंने आपके लिए अच्छा किया, आपने क्यों नहीं किया? ओके, मैं तो ये कर रही हूँ, आप क्यों नहीं कर रहे? आपने तो मुझे कभी बदला ही नहीं दिया, और इस सो ऑन। यानी इस किस्म की बातें लोग अमूमन करते हैं, जिसको मैं अपने जहन से सोचूँ ना तो बड़ी छिछोरी सी बातें लगती हैं। ऐसे लगता है कि आप सारे बदले लोगों से क्यों लेना चाहते हैं? आपने अल्लाह ताला के लिए तो कुछ किया ही कोई नहीं है, तो फिर अल्लाह ताला आपको क्यों दे? फिर इसी तरह जिस्मानी बीमार हो जाते हैं ऐसे लोग, फिर जहनी बीमारियां शुरू होती हैं, फिर अल्लाह ताला से दूरी शुरू हो जाती है, परेशानियां, मुस्तरब रहना, यानी हर किस्म की नेगेटिविटी। कोई तामीरी जहन नहीं रहता ऐसे लोगों का, लोगों की फिक्र कोई नहीं, इसलाह के तरीके नहीं आते और नेगेटिव 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 फैलता है। सवाल पैदा होता है कि जो जोड़ों के दर्द है अमूमन ये क्यों होते हैं? क्योंकि हमारे कल्चर में हर चौथा 40 से ऊपर का शख्स कहता है मेरे जोड़ों में दर्द है। वो किसी ने कहा ना कि जोड़ों का दर्द क्या होता है, कमारे इसको क्या जाने। अब आप समझ गए होंगे तो ज़रा सा हंस लें, कोई बात नहीं, कभी पढ़ते पढ़ाते स्माइल चेहरे पे आ जाए तो कोई क्लास टूट नहीं जाती। रिलैक्स्ड, दीन के नाम पे हर वक्त कड़वी कड़वी बातें और घबराए हुए। मैं किसी ऐसी जगह जाऊं जहां लोग बड़े सहमे और दुबके बैठे हो ना, मुझे समझ आ जाता है इनको एडमिशन ने डरा दिया। चुप करिएगा, बोलिएगा नहीं, ये ना हो, बच्चों को पीछे ले जाइए, शोर ना हो, फोन बंद कर। मुझे ऐसे माहौल में बात करने का मज़ा ही नहीं आता। अगला बंदा अंदर से थर थर कांप रहा है, वो आपकी बात क्या लेगा? तो रिलैक्स्ड, फिर क्या हुआ? तो जोड़े तो आसमानों पे बनते हैं, लेकिन यह है कि आप अपने जोड़ को भी ज़रा पूछिए कि आप कैसी हैं। और कुछ मर्दों और कुछ औरतों को देख कर रहम आता है कि इनके साथी बेचारे का क्या कसूर है कि इतना दुखी बंदा जो हंसता भी शायद पैसे लेकर हो। हर वक्त दुख, हर वक्त गम, मियाँ घर में आए तो बस बिजली गई, टूटी चली गई, ये नहीं आया, पानी नहीं आ रहा, क्यों भाई? वो प्लम्बर हैं, वो वापडा स्टेशन में काम करते हैं, वो गैब जानते हैं कि आज सारा दिन सुबह से आपके साथ क्या क्या खराबियां हो गई, कभी अच्छी बात से भी तो रिलैक्स होइए। अक्सर खवातीन ये गिला करती हैं, कराती मर्दों का मूड खराब होता है, मर्दों से मराद मर्द बेचारे का, जिसको शौहर कहते हैं किसी जुबान में। इन पे जादू हो गया, इनकी अम्मा ने इनको घोल के तावीज़ पिला दी कि घर जाओगे तो गुस्सा करना। तो ये जो आपका एक इतना उदास चेहरा, ये तावीज़ नहीं है जिसको आते ही उसको पहनना पड़ेगा। तो याद रखिए, रिलैक्स्ड रिलैक्स्ड और रिलैक्स्ड। तो चार वजूहत जो दी गई उसमें एक शादी का टूटना है, अपनी टूट जाए या बच्चों की टूट जाए, कितना बड़ा हव है हमारे कल्चर में, सारा खानदान हरकत में आ जाता है। ऐसे कहते हैं कि मशीनें हरकत में आ गई, गड़ गड़ गड़, उससे पूछ उससे बता, सुना तुमने पूछा तुमने बताया तुमने, क्या हुआ कैसे हुआ, आप ऐसे कीजिएगा, खाला ऐसे करे, मामू ऐसे, ऐसे लगता है कि वो कोई शादी नहीं टूट गई, कह लीजिए को कोई शहर का बंध टूट गया जिसमें से पानी आना था और ये जाना था, ठीक ही ठीक सी। अच्छे मुस्लिम माशरों में सब कुछ होता है लेकिन खप नहीं डलती। अच्छे घरानों में बहुत कुछ हो सकता है लेकिन पूरा वक्त आप सिर्फ खानदान की खबरें सिर्फ इस रंग लेना चाहते हैं कि अब हुआ क्या और उसकी बेटी क्यों घर है, तो उसका बेटा किधर गया और बहू किधर है, फिर आपका नसीब है, फिर जोड़ों में दर्द तो होगा। फिर इसी तरह मादी नुकसान और रंज, कभी कभी इंसान का कारोबार डूब जाता है, आग लग जाती, घर डूब जाता है, सैलाब आया, छत गिर गई, तो आने दीजिए, फिर मैं क्या करूँ, मैं तो हूं ना भी तो बस मुझे काफी है। फिर इससे कुलक और तन्हाई भी एक वजह है, हकारत और हसद भी है। और डॉक्टर विलियम के मुताबिक जिस समय जब कैल्शियम की मकदार बढ़ती है तो दांत खराब होते हैं, तो करें क्या, रंज जो गम को दूर भगाएं, दूसरों पर एहसान करें, दिली सुकून और तमानियत महसूस होगी आपको, यू विल फील रिलैक्स्ड। कभी भी लोगों को हर वक्त गिल्ट में ना रखें, बस लोग सर पे सवार ही रहते हैं, कुछ कर दिया, हाँ जी वो तो नहीं किया ना, आ गया, मतलब देखिए ना, कोई आपको फ़ोन करता है, अब मिसाल है कि 2 माह तक पहले बात नहीं हुई, आज आपको फ़ोन कर दिया, आ गया ख्याल, पड़ गई ज़रूरत हमारी, हाँ जी आजकल तो वो बड़े बड़ों से आपके रबते हैं, हमें कौन पूछता है। अब मुझे बताइए कि इस जुमले में, और ये जुमले सिर्फ अपने ही बोलते हैं, या खाला बोलेगी या फूफी बोलेगी या भावज बोलेगी या नंद या भाई बहनों में ये जुमले पास होंगे, अब अगला बंदा आपके घर मोहब्बत भरा पैगाम लेकर, एक केक लेकर आ गया, हाँ जी आज कुछ नहीं काम था ना तुम्हारे पास आ गए, ये टोन अच्छी नहीं है। दूसरों पर एहसान करें, खुशी दे, देखिए एक ज़िंदगी का असूल, मैं इस पे हर मुमकिन कोशिश करती हूँ, वो बोले जिसके बगैर गुजारा नहीं है, कभी ग्रज है, ऐसे ही हम कमेंट देना चाहते हैं, कोई आएगा बस फट पड़ूंगी, उस वक्त 2-3 जुमले खुद से पूछें, ये ज़रूरी है बात बतानी, क्या इस बात को सुनकर अगले के नॉलेज में कोई इजाफा होगा या ये बात सुनकर उसको दुख होगा, किसी के बच्चे की बात, किसी के बड़े की बात, किसी के घर की बात, खामोश रहिए, तब बोलिए जब आपकी बात दूसरों के दिलों पे बर्फ बनकर, ठंडक बनकर, ओले बन के बरसे, जहर में चुपते हुए तीर, आते जाते कमेंट्स, माथे पे तेवरी, हाँ जी अब हमारी तो कोई औकात ही नहीं है, हाँ जी हमें कहाँ आप अब कुछ करेंगी, आप तो मसरूफ़ ही बहुत हैं, हाँ जी आप तो हर वक्त पढ़ते पढ़ाते रहते हैं, आपने भला कहाँ हमें अपने घर बुलाना है, ये जुमले ना बोलिए। हालांकि इन जुमलों में मोहब्बत होती है, ये भी बता दूँ, बहनों को भाइयों से मान और मोहब्बत ही होता है, इसी तरह खून के रिश्तों में भी होता है, अच्छी दोस्तों में भी एक दूसरे से बड़े मान होते हैं, लेकिन अपने दिल से कोई ऐसी बात निकाल कर जो आपकी ज़ुबान को दरांती या छुरी चाकू बनाए और अगले तक पहुंचा दे, ये ना कीजिए। तो नेकी और एहसान देने वाले बन जाएं, लेने वालों से ज़्यादा देने वाले बने। फिर इसी तरह देखिए, अगर किसी से हसद महसूस हो तो उसका क्या इलाज है, पहली बात देखिए कज़ा और कदर पर राज़ी रहिए, अल्लाह ने उसको दिया मुझे नहीं दिया, उसको ज़्यादा दिया मुझे कम दिया, मेरे से नीचे को मैं देखो अल्लाह ने मुझे कितनों से अच्छा दिया। फिर इस तरह मेहनत शुरू करें, मशगूल रहिए, फारिग जहन वो शैतान की वर्कशॉप ही होती है ना, एम्प्टी माइंड इज डेवल्स वर्कशॉप। फिर इस तरह हसद से बचने की दुआएं करें, और मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, इतनी प्यारी आयत है कुरान में, उसी पे तवज्जो कर लिया करें, और जिससे हसद शुरू हो ना दिल में उसकी तारीफ़ करें, आप देखेंगे कि उसके बारे में आपके दिल में एक रॉ जाति की जो नेगेटिविटी थी ना वो ख़त्म होगी। सास की कोई बात बुरी लगती है, बैठें जहाँ अपनी सास की तारीफ़ें शुरू करें, ख़ासतौर पर उनकी उम्र की औरतों के बीच में, तो अगले ही दिन उन्होंने फ़ोन करके आपकी सास को कहना तुम्हारी बहुत तुम्हारी बड़ी तारीफ़ कर रही थी, हवाओं में से बात चली जाती है, आप जाए ना जाए बात चली जाती है, तो वो सास अच्छा मेरी तारीफ़ कर रही थी, वैसे अच्छी ये भी है, मैं ऐसी कभी गुस्से में आ जाती हूँ, वगैरह वगैरह। फिर हदीस लीजिए सही बुखारी की 6064, आपने फरमाया कि बदगुमानी से बचते रहो, क्योंकि बदगुमानी की बातें अक्सर झूठी होती हैं। इन्ना कसीरा मिन जन्नी, कुरान क्या कहता है, अक्सर जन झूठ होते हैं। और लोगों के ऐप तलाश करने के पीछे ना पड़ो, आपस में हसद ना करो, किसी की पीठ पीछे बुराई ना करो, बुगस ना रखो, बल्कि सब अल्लाह के बंदे आपस में भाई भाई बन करो। खुश रहने का है ना नुस्खा। मुझे तो ऐसे लगता है अल्लाह के नबी सल्लम को साइकोलॉजी भी आती थी। और यकीन कीजिए, ये सब चीज़ें निकाल कर फेंकिए अपनी ज़िंदगी से जड़ी बूटियों की तरह। आपका ईमान ग्रो करेगा, आपका अख्लाक खूबसूरत होगा, और आप पहले से ज़्यादा खुश महसूस होंगे और हेल्दी फील होंगे। और एक निशानी ले लें, क्या लोग आपकी मौजूदगी में खुश होते हैं? क्या लोग ख्वाहिश करते हैं कि आप उनको थोड़ा टाइम दें, उनके पास बैठें? और लोग भी वो जो अच्छे डिसेंट किस्म के लोग हों, वरना तो हर एक को अपने जैसे तो मिल ही जाते हैं। फिर अगला टॉपिक लीजिए, अपने मामलात को सुकून से हल कीजिए। जी ये बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि प्रैक्टिकली भी मैंने देखा है कुछ ख्वातीन इतनी हैप हैज़र्ड होती हैं, जिधर वो चली गई बस हर वक्त, जिसको पंजाबी में कहते हैं ना, पंबीरी पोई रहती है हर वक्त। ये भी हाय हाय हाय, ये होलना हलाना, होलते और हलाते रहते हैं, और ऐसे लोगों के स्टमक अक्सर ख़राब होते हैं। तो अपने मामलात को सुकून से हल कीजिए। डेल कार्नेगी कहते हैं, अक्लीम जनूबी के जंगी और चीनी लोगों को कुलक के सबब होने वाले अमराज़ कल्ब से बहुत कम सबका पड़ता है, क्योंकि वो मामलात को बहुत सुकून से निपटाते हैं। इसका मज़ीद कहना है कि खुदकशी करने वाले अमरीकी 5 बड़ी बीमारियों के नतीजे में मरने वाले अमरीकियों यानी अमेरिकन से कहीं ज़्यादा हैं। ये वहशतनाक हकीकत ऐसी है जिस पर मुश्किल से यकीन आता है। जी आपको इन सारी चीज़ में से क्या समझ आया, ज़रा उसको दोहरा लीजिए। सुकून, बस अमरीकियों को भी भूल जाएं, डेल कार्नेगी को भी भूल जाएं, सुकून क्या होता है? नंबर एक, इत्मीनान कल्ब, दिल मुतमईन। ये जो हार्ट बीट है ना, ये नॉर्मल रहनी चाहिए। और आप ज़रा जाकर चेक करिए, किसी से पूछ ले कि 1 सेकंड में या 1 मिनट में कितनी दफ़ा दिल धड़कना चाहिए, और दिल ही बता देते धक 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 धक। इत्मीनान, ऐसी स्लो जैसे पेंडुलम है ना, टेक 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 टेक। घड़ी की चाबी को देख ले, घड़ी में से एक आवाज़ आती है उसको देख ले। तो दिल अपनी जगह पे, यानी मैं इत्मीनान कल्ब को कहती हूँ दिल अपनी जगह पे। ये नहीं कि दिल जो वो हनाजिर तक पहुंच जाए। सूरत अल अहज़ाब में अल्लाह ने कहा कि उनके दिल उनके हनाजिर तक पहुंचे हुए थे। कभी कभी खौफ की वजह से अपने दिल की धड़कन बाहर तक सुनाई देती है, ये कैफियत नहीं होनी चाहिए अमूमन। फिर इसी तरह जहनी सुकून, तो जहन पुरसकून दिल के बाद। अच्छा, तीसरी चीज़ जिस्मानी आसूदगी और राहत। अगर आप इन तीनों पर नज़रें जमाएं, दिल दिमाग और जिस्म, पीछे क्या रह गया? तो जब दिल मुतमईन तो जहन मुतमईन, तो जिस्म तो फिर बीमार नहीं होगा। और ऐसे लोग अल्हम्दुलिल्लाह सेहतमंद होते हैं दूसरे लोगों की निस्बत। और जो डेल कार्नगी ने चाइनीज़ के बारे में बात की और ख़ुदकुशी करने वाले अमेरिकन बारे में बात की, तो उसमें भी तो आप देख लीजिए, सीखने की बात है ना। दिल की बीमारियां कम होती हैं उन लोगों को जो अपने मामले सुकून से हल करते हैं, क्योंकि दिल बेचारा बड़ा नाजुक होता है, सबसे मजबूत, लेकिन टूट बड़ी जल्दी जाता है। तो अपने आप को पुरसकून रखिए। कैसे? क्वेश्चन, हाउ कैन आई डू इट? तो चंद अवामिल नोट कीजिए। दिल का सुकून किधर है? अल्लाह की याद में, अला बि ज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, फिर अल्लाह पे तवक्कुल में सुकून है। रज़ी ब रज़ा यानी रज़ा इलाही पर राज़ी रहना, इसमें सुकून है। फिर इस तरह मोमिन और साले शरीक हयात, यानी औरत है तो मर्द और मर्द है तो औरत, अच्छा साथी चूज़ कीजिए, तो उससे भी इंशाल्लाह दिल को सुकून मिलेगा। अब ना करिए, अब तो हो चुकी है शादी, खुदा के लिए उनके लिए कहा है जिनके भी नहीं हुई। अच्छा, अब आपकी हो गई है, क्या करें? उसको मोमिन बनाने की कोशिश करें। बीवी की सलाह कीजिए, शौहर की कीजिए, दुआएं मांगिए, अच्छे रवैयों के साथ जोड़िए, क्योंकि जो अगली ले आएंगे वो भी पता नहीं कैसी निकलेगी। फिर इसी तरह आप देखिए, सादा तर्ज ज़िंदगी और हलाल रिस्क कमाइए। जी लिव सिंपल। फिर रात की पुरसकून नींद लीजिए। ये 6 चीज़ें लिख कर अपने घर में फ्रिज पे लगा दें, मिरर में लगा दें, जिधर ज़्यादा नज़र पड़ती है आप देखेंगे। इनमें ख़ास तौर पे आप देखिए कि लिव सिंपल और पुरसकून नींद। आप रात को 3 घंटे भी पुरसकून होके सो जाए ना, इट्स एनफ फॉर द होल डे। पूरा दिन अगला आप काम कर सकते हैं। दिन में काम कीजिए, एक्टिव होके इतना थक जाएं कि बस ईशा पढ़ते ही बिस्तर पे गिर जाए। اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم لوگ تکبیر کی آواز سن لو تو نماز کے لیے معمولی چال سے چل پڑو، سکون اور وقار کو بہرحال پکڑے رکھو اور دوڑ کے مت آؤ، یعنی نماز کی طرف بھی آنا ہے تو سکون سے آنا ہے، پھر نماز کا جو حصہ ملے اسے پڑھ لو اور جو نہ مل سکے اسے بعد میں پورا کر لو۔ یہ بخاری کی روایت ہے 636۔ تو جب نماز کی طرف سکون سے آنا ہے تو اس باقی وقت ہڑبنگ کیوں مچی رہے گھر میں، اور کھانے کھاتے اور پکاتے اور شاپنگ کرتے اور گاڑی چلاتے پھر پریشان کیوں رہنا ہے؟ تو امید ہے کہ آپ کو اس ٹپ سے فائدہ ہوگا۔ نیکسٹ ٹپ لیجئے، اللہ تعالیٰ سے خوش گمان رہیں، یہ نہ کہیں کہ اللہ نے میرے ساتھ تو خراب ہی معاملہ کرنا ہے، اچھا سوچئے۔ ولیم جیمز کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے گناہ اور غلطیاں معاف فرما دیتے ہیں، لیکن ہمارا عصبی یعنی مسکولر سسٹم کبھی ایسا نہیں کرتا۔ آپ اس جملے کو لکھیے، یعنی اللہ معاف کر دیتا ہے، ہمارے مسلز ہمیں معاف نہیں کرتے۔ آپ جب ذرا اس پہ زیادہ بوجھ ڈالیں گے نا تو آپ کو ضرور مسکولر پینس ہوں گی۔ اسی طرح ابن الوزیر اپنی کتاب العواصم من القواسم میں لکھتے ہیں، اللہ کی رحمت کی امید بندے کے لیے امید کا در وا کر دیتی ہے، اسے اطاعت کی قوت دیتی ہے، اسے نفلوں کے لیے چستی، خیر کے کاموں کے لیے سبقت کرنے والا بنا دیتی ہے۔ ان کا یہ کہنا بالکل درست ہے کہ بعض نفوس کی اصلاح، اللہ کی رحمت، اس کی بندہ نوازی، توبہ کو قبول کرنے کی امید اس کی بردباری سے ہوتی ہے۔ توبہ اور توکل سے قربت اختیار کرتے اور محنت اور مشقت سے کام لیتے ہیں۔ تو کیا سیکھا پھر ہم نے؟ اللہ تعالیٰ سے خوشگوان رہیے، بی ہوپ فل۔ دیکھیں نا، ہم گمان کریں جس کے بارے میں جیسا وہ ویسا ہی لگے گا نا۔ بیٹے کے بارے میں سوچتے ہیں یہ گیا ہوگا باہر، یہ دوستوں کے ساتھ پان کھا رہا ہوگا، اور یہ باہر گیا، اور یہ فلم دیکھ رہا ہوگا، اور یہ پتہ نہیں کدھر ہے، ایسے ہی ہوگا۔ ہسبینڈ ذرا سی دیر ہو گئی آنے میں بیچاروں کو، تو خواتین تو پتہ نہیں بس دوستوں میں نکل گئے ہوں گے، مل گیا ہوگا کوئی، ادھر چلے گئے ہوں گے، اور پتہ نہیں اس سے بھی غلط نہ کوئی سوچ لے۔ ہمیشہ ریلیکس رہیے، ہم سب اپنی زندگی کے 90% معاملے خوش گمانیوں کے ساتھ پورے کر سکتے ہیں۔ تو ایسے لوگ اللہ سے جب خوش نما ہوں گے تو اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی رحمت کی امید رکھیے، اطاعت کی قوت پیدا کیجیے، بات مانیے نا اللہ کی، پھر سر نفلوں کے لیے چستی دکھائیے، دو دو کر کے نفل دن میں 4 دفعہ پڑھی لیا کریں، پھر اسی طرح خیر کے کاموں میں سبقت لائیے، فاستبقوا الخیرات کی صورت میں، پھر توبہ کی امید رکھیے، پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے، سورج سجدہ آیت 16، اور رات کو جو سورج سجدہ پڑھائی جاتی ہے نا، اس آیت پہ آ کے ضرور سمجھ آ جاتا ہے کہ یہی سورت کیوں اللہ کے نبی پڑھتے تھے، کہ تتجاف جنوب ہم ان المداجی یدعون ربہم خوفا و طمعا، ان کے پہلو اپنے بستروں سے الگ رہتے ہیں، اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو ایک ہے رجا، رحمت، امید، یہ کیا ہوتی ہے؟ نیک کاموں پر اللہ سے اجر اور ثواب کی آرزو۔ ہر حال میں اللہ کی رحمت کی ہمیں امید بھی رکھنی چاہیے، دعا بھی کرنی چاہیے، یا حیو یا قیوم برحمتی کا نستغیث، اور اللہ تعالیٰ سے تعلق بھی اسی سے مضبوط ہوتا ہے۔ تو جب رحمت ہو گئی تو پھر بیڑا بھی پار ہوگا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اپنے نبی کی زبان سے، سورہ کہف کی بالکل آخری آیتوں کو دیکھیے، قل انما انا بشر مثلکم، آپ کہہ دیجئے میں تو تم جیسا ہی ایک انسان ہوں، میری جانب وہی کی جاتی ہے، اور سب کا معبود صرف ایک ہی معبود ہے، تو جسے بھی اپنے پروردگار سے ملنے کی آرزو ہو، پوچھیے آپ کو ہے، تو پھر اسے چاہیے کہ نیک اعمال کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ ہمیں اللہ ہی پہ نظریں لگ جائیں اور اچھی امیدیں لگیں۔ اسی طرح عبداللہ بن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی منبر پہ چڑھے اور فرمایا، میں قسم اٹھاتا ہوں، میں قسم اٹھاتا ہوں، میں قسم اٹھاتا ہوں، پھر آپ منبر سے اتر آئے اور فرمایا، خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، جس آدمی نے 5 نمازیں ادا کی اور کبیرہ گناہوں سے گریز کیا وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے گا داخل ہو جائے گا۔ یہ سلسلہ صحیحہ کی روایت 494 ہے۔ تو بہرحال اس ساری بات سے ہم نے کیا سیکھا؟ اللہ کی مدد کی امید رکھنی ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا، ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا ہے، صرف اللہ ہی سے مانگنا ہے، اجر و ثواب کی امید کی نیت سے نیک اعمال کرنے ہیں۔ میں تو کہہ سکتی ہوں کہ ریسیپی آف ہیپینس آپ نے لے لی ہے۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ اسلام اور مسلمان، یہ دو لفظ آتے ہی एक किस्म का रिलैक्सेशन फील होता है। चंद दिन पहले भी किसी ने कहा कि एक बड़े मारूफ शख्स थे तो उन्होंने खुदकुशी कर ली। और मुझे सबसे ज़्यादा हैरत इसकी होती है जब लोगों को हंसाने वाले कॉमेडियंस और इसी तरह से वो लोग जो कहते हैं कि हम दुखी इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं, उनको हंसा के और इसी तरह मजाक में डालकर वो जब सुसाइड करते हैं। तो याद रखिए कि अंदर की खुशी बाहर की खुशी से ज़्यादा अहम होती है। चलिए अगले टॉपिक पे जाते हैं। जब ख्यालात सताएं, आपको तो नहीं सताते इस वक्त, तो नहीं किसी को कोई ख्याल आ रहा उल्टा सीधा। तो जब कभी कोई ख्याल सताए तो क्या करें? थॉमस हेडसन कहते हैं, ऐसा कोई ज़रिया नहीं पाया जाता जिससे इंसान तफक्कुरात से छुटकारा पा ले। तजुर्बे से ये बात दुरुस्त मालूम होती है, हद तक इंसान पढ़ते लिखते वक्त भी सोच में पड़ा रहता है। तफकीर यानी तफक्कुर गौर, इसको रोकने और मुंजबित बनाने का बेहतरीन वसीला नफा बख्श और संजीदा और मुफीद अमल है। खाली रहने वाले ही ख्यालात और अहम का शिकार होते हैं। क्या पता चला कैसे एक इंसान इन सारी चीज़ों में पढ़कर अपने आप को दुखी करता है? तो क्या देखा हमने कि जब ख्यालात सताएं तो उनसे जान छुड़ाएं। आप देखिए कि बहुत सारे लोग इसी तरह के हैं, सिर्फ तफक्कुरात की वजह से होता हुआ था कुछ नहीं। पीछे भी ये बात हमने की थी कि अक्सर वहम और ख्याल जो आते हैं वो असल में होते नहीं हैं। जिंदगी में अपने आप को ये यकीन दिलाएं, जब कभी कुछ मसला हो बोले कुछ नहीं होना, ऐसी घबराहट है, ऐसी परेशानी है और ऐसे ये और वो और दिस एंड दैट है। इसी तरह से आप देखते हैं कि जितना ज़्यादा ऐसी, जिसको आप उर्दू में कहते हैं ना नागहानी की बातें, रह जाती फिक्रें पाल लेते हैं ना, उतने आप दुखी होते हैं। तो ऐसा कोई ज़रिया नहीं है जिससे इंसान तफक्कुरात पे काबू पाए, ये थॉमसन का कॉल है। और वो इसका बेहतरीन तरीका क्या कहते हैं कि लोगों को नफ़ा दीजिए, नफ़ा बख्श काम कीजिए। तो बी बेनिफिशियल, बी प्रोडक्टिव, जैसे हनी बी होती है, आप दूसरों को फ़ायदा देते जाएं, अल्लाह ताला आपके गम दुख तकलीफ़ें दूर फरमा देंगे। फिर इसी तरह आप देखिए कि बेकारी से बचिए। क्यों? इसलिए कि बेकार बैठना ख़तरों से खाली नहीं है। ऐसे शख्स का जहन शैतान का मस्कन है। बेकार आदमी शुतर बेमुहार, इधर से उधर उधर से इधर होता है। जैसे शुतर कहते हैं ऊँट को, तो बेमुहार यानी जिसके गले में रस्सी ना हो। तो आप देखिए कि ऊँट जितना शरीफ लगता है ना, जब कभी सरकश होता है तो बहुत ही फिर भागता है, मालिक को भगाता है पीछे पीछे। बिल्कुल इसी तरह आप जब भी ये अपने जहन को खाली छोड़ेंगे ना, कभी इधर जाएगा कभी उधर जाएगा, इसी तरह से। फिर इसी तरह बेकार आदमी फिक्र और तफक्कुरात में उलझा रहता है और माजी और हाल और मुस्तकबिल की फाइलों में खोया रहता है। ऐसा शख्स करें क्या? नमाज, तिलावत, मुतालिया, तैराकी, स्विमिंग, घर या ऑफिस की सफाई और वॉक और हेल्दी चीज़ों में लगी है। आज का दिन संवारें और काबिलियत और तवक्कुल में हर रोज़ इजाफा करें। बस इतना ज़्यादा आपका दिल इस चीज़ पे मुतमईन हो कि आपका दिल आपको बताए कि इससे ज़्यादा मैं मसरूफ़ रह नहीं सकती। अच्छा, अमूमन जो लोग बेकार रहते हैं तो उस बेकारी के नतायज क्या निकलते हैं? पहली बात क्या है? तफक्कुरात, फिर परेशानियाँ, फिर तवहमात, फिर अफवाहें। इतनी चीज़ें फैलती हैं कि आप कह सकते हैं कि खाली दिमाग शैतान का ठिकाना है। हमसे क्या मतलूब है? मसरूफ़ रहें, तस्बीह व तहलील करें शऊर से, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। आप देखेंगे कि जब आप शऊर के साथ तस्बीह करेंगे ना, तो ऐसे ही फील होगा आपको कि आपने अल्लाह ताला से बातें कर ली। फिर इसी तरह इल्म हासिल कीजिए, तामीरी काम कीजिए। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास से एक रिवायत है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, दो नेमतें ऐसी हैं जिनमें अक्सर लोग अपना नुकसान करते हैं, एक है सेहत तो तंदरुस्ती और फुर्सत और फरागत के अय्याम। इब्ने माजा की रिवायत है 4170। तो जितना ज़्यादा फरागत को सही तरह यूटिलाइज करेंगे दिल दिमाग खुश रहेगा।